एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी जिंदगी की कहानी में गहरे उतर रहे हैं जो चकाचौंध और बेहद गहरे दुख के बीच लगातार झूलती रही। लीसा मैरी प्रेस्ली, एक नाम जो सीधे जुड़ता है अमेरिकी संगीत के सबसे बड़े सितारे से।
जी हाँ, एल्विस प्रेस्ली से।
बिल्कुल, लेकिन उनकी अपनी एक आवाज थी, अपना संघर्ष था और अपनी एक कहानी भी थी।
और अब उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी राइली कियो ने उनकी अधूरी छोड़ी ऑडियो टेप्स को एक किताब, एक संस्मरण की शक्ल दी है। नाम है फ्रॉम हियर टू द ग्रेट अननोन।
हाँ, ये किताब जो अक्टूबर 2024 में आ रही है, ये अपने आप में ही काफी अलग है ना?
बिल्कुल, ये सिर्फ एक और सेलिब्रिटी की कहानी नहीं है, ये माँ बेटी के बीच का एक संवाद है। एक ऐसा संवाद जो समय और मौत के पार जा रहा है एक तरह से। राइली ने अपनी माँ की बिखरी हुई आवाज़ को सुना, उसे सहेजा और अब दुनिया के सामने रखने का एक बड़ा जिम्मा उठाया है। तो ये लिसा मैरी की अपनी कहानी होगी, उनकी अपनी शर्तों पर।
लिसा मैरी प्रेस्ली 1 फरवरी 1968 से 12 जनवरी 2023 तक का उनका जीवन। वो गायिका थीं, गीतकार थीं, एल्विस की इकलौती संतान, ग्रेसलैंड की वारिस और शायद सबसे बढ़कर एक माँ।
जी,
पर उनकी कहानी आज हमारे लिए क्यों मायने रखती है, क्या खास है इसमें?
देखिए, ये कहानी है असाधारण प्रसिद्धि के उस दबाव की जिसे हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कहानी है असहनीय दुख की और सबसे ज्यादा अपनी पहचान बनाने की एक अथक, कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई की।
और ये सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं थी, है ना? मतलब दुनिया से लड़ाई
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अंदर की लड़ाई कहीं ज्यादा गहरी थी। अपने पिता की उस विशाल विरासत की छाया से बाहर निकलने की कोशिश, खुद को सिर्फ एल्विस की बेटी से ज्यादा साबित करने की वो जो जद्दोजहद होती है।
हाँ,
ये किताब उसी मुश्किल सफर का एक कच्चा और शायद बहुत ईमानदार दस्तावेज होने का वादा करती है।
तो चलिए इस सफर को शुरू से देखते हैं, उनके जन्म से। ग्रेसलैंड 1968, वो जगह कैसी रही होगी उनके लिए?
हाँ, ग्रेसलैंड, राइली ने टेप्स के हवाले से बताया है कि वो उनके लिए एक जादुई खिला भी था, लेकिन साथ ही एक सोने का पिंजरा भी।
और पिता एल्विस, दुनिया के लिए तो वो किंग थे, बेटी के लिए कैसे थे?
बेटी के लिए वो बस डैडी थे, प्यार करने वाले, चंचल, मजाकिया, लेकिन साथ ही बेहद जटिल और खामियों से भरे हुए। महंगे तोहफे देते थे, जेट, टट्टू, फरकोट।
वाह।
हाँ, लेकिन उस प्यार के साथ साथ माहौल में एक अजीब सी अस्थिरता भी थी। पिता का अनियमित बर्ताव, उनकी सेहत का धीरे धीरे गिरना, दवाओं पर उनकी बढ़ती निर्भरता, ये सब एक बच्ची की नज़र से कैसे छिप सकता था?
सही बात है। और फिर सिर्फ 4 साल की उम्र में माता पिता का तलाक।
जी, और जिंदगी दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में बट गई। एक तरफ ग्रेसलैंड की वो सपनों जैसी थोड़ी अवास्तविक दुनिया, और दूसरी तरफ बेवली हिल्स में मॉम प्रिसिला के साथ एक ज्यादा सधी हुई नियमों वाली जिंदगी।
ये तो काफी मुश्किल रहा होगा एक बच्ची के लिए।
बहुत ज्यादा। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया, 16 अगस्त 1977,
एल्विस प्रेस्ली की मौत।
हाँ, लीसा मैरी सिर्फ 9 साल की थी और उस वक्त ग्रेसलैंड में ही मौजूद थी। ये सिर्फ पिता को खोना नहीं था, ये बचपन का एक तरह से हिंसक अंत था।
और अचानक कंधों पर आ पड़ा उस विरासत का भारी बोझ।
बिल्कुल, वो जो निजी दुख था वो रातों रात एक सार्वजनिक तमाशा बन गया, और यही शायद वो फाउंडेशनल वूंड, यानी वो बुनियादी घाव था जिसने उनके पूरे जीवन को कहीं ना कहीं आकार दिया।
यहीं से दुनिया पर वो अविश्वास और दुख के साथ वो रिश्ता शुरू हुआ।
लगता तो यही है, पिता अब सिर्फ डैडी नहीं रहे, वो एक वैश्विक मिथक बन गए, और लीसा मैरी वो उनकी जीती जागती निशानी, उनकी परछाई बन गई।
इस पृष्ठभूमि के साथ उनकी किशोरावस्था कैसी गुजरी? विद्रोह तो लाजमी था शायद।
जबरदस्त विद्रोह था। वो जो प्रेस्ली नाम के साथ उम्मीदें जुड़ी थीं, उनके खिलाफ जैसे एक ऐलाने जंग। नशा, पंक रॉक संगीत, ये सब शायद उसी छवि से बाहर निकलने की कोशिश थी जो दुनिया ने उन पर थोप दी थी, अपनी असली पहचान की तलाश।
उनकी पढ़ाई लिखाई वो कैसी रही?
वो भी आसान नहीं थी, कई स्कूल बदले, एक थेरेप्यूटिक बोर्डिंग स्कूल में भी रहीं। वो जो प्रसिद्धि का दबाव था ना, वो लगातार बना हुआ था। इसी दौरान माँ के जरिए वो साइंटोलॉजी के संपर्क में आईं। कुछ समय के लिए शायद उसने उन्हें एक ढांचा और एक समुदाय दिया जिसकी उन्हें तलाश थी।
और फिर उनकी पहली शादी हुई डैनी कियो से।
जी, डैनी कियो, एक संगीतकार। ये शादी शायद प्रेस्ली की उस चकाचौंध वाली कुनिया से बाहर एक स्थिरता पाने की कोशिश थी।
और इसी रिश्ते से उनके दो बच्चे हुए, राइली और बेंजामिन।
हाँ, और मातृत्व, जैसा राइली बताती हैं, उनकी जिंदगी का शायद सबसे अहम और सबसे स्थिर हिस्सा बन गया, उनकी सबसे मजबूत पहचान।
कई सालों तक ये सवाल बना रहा कि क्या वो संगीत में आएंगी, एल्विस की बेटी हैं तो क्या वो भी गाएंगी।
हाँ, ये अटकलें तो हमेशा से थीं, और फिर 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने ये कदम उठाया। और ये सिर्फ करियर चुनना नहीं था, ये अपनी कलात्मक पहचान को दुनिया के सामने रखने का एक बहुत हिम्मत वाला फैसला था।
2003 में उनका पहला एल्बम आया, टू हूम इट मे कंसर्न।
जी, और उसे काफी सराहा भी गया, आलोचकों ने भी तारीफ की, और व्यावसायिक तौर पर भी सफल रहा।
उनकी आवाज में एक अलग तरह की गहराई थी, एक वजन था, और गाने बहुत निजी थे, है ना, जैसे लाइट्स आउट।
बिल्कुल, स्वीकारोक्ति जैसे गाने थे वो। लेकिन ये आसान नहीं था, जरा सोचिए, हर नोट, हर शब्द की तुलना किससे हो रही थी? एल्विस प्रेस्ली से।
हाँ, वो दबाव तो अकल्पनीय रहा होगा।
शायद संगीत उनके लिए अपने दर्द को, अपने अंदर के तूफान को बाहर निकालने का एक जरिया बन गया था।
उन्होंने बाद में और एल्बम भी निकाले, नाउ वॉट 2005, स्टॉर्म एंड ग्रेस 2012।
जी, और धीरे धीरे एक स्वतंत्र कलाकार के तौर पर उनकी पहचान बनी।
लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी, वो लगातार तुलना का सामना करना, अपनी भावनाओं को दुनिया के सामने रखने का वो जोखिम,
और साथ में माँ होने की जिम्मेदारियां भी।
बिल्कुल, करियर और मातृत्व में संतुलन साधना, ये सब आसान नहीं रहा होगा।
इसी दौर में उनकी कुछ हाई प्रोफाइल शादियां भी हुईं, माइकल जैक्सन और निकोलस केज के साथ।
हाँ, शायद ये भी उन लोगों के साथ जुड़ने की एक कोशिश थी जो उस असाधारण प्रसिद्धि के अकेलेपन और दबाव को समझ सकते थे,
जिनसे वो शायद रिलेट कर पाती।
जिंदगी के बाद के सालों में क्या हुआ? क्या वो संगीत से थोड़ी दूर हो गई?
हाँ, ऐसा लगता है उन्होंने संगीत से थोड़ा किनारा किया, उनका ध्यान अपने परिवार पर ज्यादा टिक गया, खासकर उनकी जुड़वां बेटियों पर, फिनले और हार्पर।
लेकिन ये दौर भी आसान नहीं था, यहीं पर नशे की लत के साथ उनका संघर्ष फिर से गहराया।
जी, खासकर ओपियोइड्स की लत। कहा जाता है कि ये जुड़वा बेटियों के जन्म के बाद ज्यादा बढ़ गई थी। ये व्यसन और उससे उभरने की कोशिशों का एक दुखद, बार बार चलने वाला चक्र था, और उन्होंने इसके बारे में बाद में काफी खुलकर बात भी की।
हिम्मत की बात है।
बिल्कुल, और फिर आया साल 2020 और उनके जीवन की शायद सबसे बड़ी, सबसे विनाशकारी त्रासदी,
उनके बेटे बेंजामिन क्यो की आत्महत्या।
हाँ, वो सिर्फ 27 साल के थे। इस घटना ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। राइली क्यों ने किताब में बताया है कि इस हादसे के बाद उनकी माँ की जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनमें एक ऐसा अथाह दुख भर गया जिससे वो फिर कभी पूरी तरह उभर नहीं पाई।
पहले सिर्फ 9 साल की उम्र में पिता को खोना और फिर अपने जवान बेटे को इस तरह, इसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है।
नामुमकिन है। और इस त्रासदी के बाद लीज़ा मैरी का जो सार्वजनिक व्यक्तित्व था वो भी बदला। वो अब सिर्फ एक, क्या कहते हैं, सर्वाइवर नहीं थी, बल्कि वो गहरे दुख और हानि से जूझ रहे लोगों के लिए एक बहुत मुखर, एक बहुत कच्ची आवाज बन गई। उन्होंने अपने दुख के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में अविश्वसनीय ईमानदारी से लिखा और बोला।
उनके आखिरी साल कैसे बीते?
राइली के मुताबिक वो अपनी बेटियों के लिए जीने की कोशिश कर रही थी, हर दिन दुख के उस गहरे समंदर से लड़ते हुए, बस एक एक दिन काट रही थी।
और फिर जनवरी 2023 में उनकी अचानक मृत्यु, इसने सबको चौंका दिया।
हाँ, चौंकाया तो जरूर, लेकिन उनकी जिंदगी के दर्द भरे सफर को देखते हुए ये अंत दुखद रूप से शायद उतना अप्रत्याशित भी नहीं था।
किताब का जो उपसंहार है, जो राइली ने लिखा है,
हाँ,
वो एक बेटी की श्रद्धांजलि है, उस माँ की कहानी पर एक बहुत मार्मिक टिप्पणी है जिसने असहनीय को सहा जब तक कि वो और सह नहीं सकी।
इस पूरी असाधारण और दुख भरी जिंदगी को देखते हुए उनके मूल दर्शन, उनके मूल्यों के बारे में क्या कहा जा सकता है? क्या चीज थी जो उन्हें चलाती थी, जो उन्हें अंदर से गाइड करती थी? ऐसा लगता है कि उनका पूरा विश्व दृष्टिकोण, दुनिया को देखने का नजरिया, वो हानि के अनुभव से गढ़ा गया था। उन्हें दुनिया एक नाजुक जगह लगती थी जहां कभी भी कुछ भी बुरा हो सकता है।
एक तरह का भाग्यवाद।
हाँ, शायद एक गहरा भाग्यवाद, जैसे वो मानती थी कि दर्द और अंधेरा जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, इनसे बचा नहीं जा सकता, और शायद इसीलिए उन्हें सतहीपन और दिखावे से सख्त नफरत थी।
दिलचस्प है, क्योंकि वो खुद ऐसी ही दुनिया में पली बढ़ी।
बिल्कुल, और शायद इसी वजह से उनमें भावनात्मक ईमानदारी कूट कूट कर भरी थी। अंधेरे से भागने की बजाय उसका सामना करना, उसे स्वीकार करना, ये उनके जीने का तरीका बन गया लगता है।
उनकी आध्यात्मिक खोज के बारे में क्या कहेंगे, साइंटोलॉजी से जुड़ाव, फिर उससे दूरी।
हाँ, वो भी शायद उसी ईमानदारी का हिस्सा था। वो जवाब ढूंढ रही थी, साइंटोलॉजी से जुड़ी, फिर मोहभंग हुआ। मृत्यु के बाद चेतना के बने रहने में उनका विश्वास था। दुख परामर्श में उन्होंने सांत्वना खोजी। उनका एक मूल सिद्धांत था कट्टर ईमानदारी।
कट्टर ईमानदारी,
हाँ, मतलब रहस्यों को, शर्म को वो जहर मानती थी। उनका मानना था कि सच्चाई का सामना करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो।
और उनकी प्रेरणाएं क्या थीं? What motivated her? वो कौन सी ताकतें थीं जो उन्हें आगे बढ़ाती रहीं?
मुझे लगता है तीन मुख्य धाराएं दिखती हैं। पहली और शायद सबसे साफ, वो थी पिता की छाया से अलग अपनी एक पहचान बनाने की तीव्र इच्छा।
हाँ, ये तो बार बार सामने आता है।
बिल्कुल, उनका संगीत करियर, यहाँ तक कि उनकी कुछ निजी पसंदें भी, वो सब इसी कोशिश का हिस्सा लगती हैं। वो एल्विस की विरासत को मिटाना नहीं चाहती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सिर्फ उनकी परछाई बनके भी नहीं रहना चाहती थी।
दूसरी प्रेरणा?
दूसरी और शायद सबसे शक्तिशाली प्रेरणा, अपने परिवार की, खासकर अपने बच्चों की सुरक्षा। मातृत्व उनके जीवन का लंगर था, सबसे स्थिर बिंदु। अपने अस्थिर बचपन के अनुभव के बाद वो अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित, प्यार भरी दुनिया बनाना चाहती थी। और बेंजामिन की मृत्यु के बाद तो उनकी बेटियां ही उनकी जीने की एकमात्र वजह बन गई थीं। रिकॉर्डिंग्स में ये बात साफ है।
और तीसरी प्रेरणा?
तीसरी प्रेरणा थोड़ी जटिल है। वो थी पिता की विरासत का सम्मान करना, मगर अपनी शर्तों पर। ये एक मुश्किल संतुलन था।
कैसे?
देखिए, ग्रेसलैंड और एल्विस की संपत्ति की संरक्षक के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। वो उस विरासत की देखभाल करती थी, लेकिन वो सिर्फ उस मिथक को नहीं, उस इंसान को भी याद रखना और करवाना चाहती थी जिसे वो जानती थी, वो खामियों से भरा मानवीय पिता।
ये वाकई एक मुश्किल संतुलन है।
जी,
और जब जिंदगी ने उन पर मुश्किलें फेंकी, और मुश्किलें तो बहुत आईं, तो उनका सामना करने का तरीका क्या था? वो कैसे रिएक्ट करती थी?
उनका तरीका ज्यादातर लड़ने का ही था, लेकिन उनकी लड़ाई अक्सर अंदरूनी होती थी। उनमें एक तरह की अवज्ञापूर्ण सहन शक्ति थी, डिफाइंड एंड्योरेंस।
मतलब
जब चुनौतियां आती थीं, मीडिया का दखल, नशे की लत, निजी संघर्ष, तो वो अक्सर पीछे हटकर अपने अंदरूनी दायरे को और मजबूत करती थी। वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी।
उनकी प्रतिक्रियाओं में एक अजीब सा मेल भी दिखता है, कच्ची भेद्यता और साथ ही कठोर लचीलापन।
बिल्कुल सही, वो अपना दर्द स्वीकार करने से डरती नहीं थी। उनके लेखों में, उनकी बातों में ये साफ झलकता है, लेकिन साथ ही वो खुद को कभी पीड़ित या बेचारी की तरह पेश नहीं करती थी। घावों को स्वीकारना, निशानों के साथ जीना सीखना, ये उनका अंदाज था।
हालांकि बेंजामिन की मौत ने शायद इस सहन शक्ति की भी सीमा दिखा दी।
हाँ, जैसा रायली बताती हैं, उसके बाद उनका जीने का तरीका बस एक पल से दूसरे पल तक सांस लेना बन गया था, डे बाय डे, समटाइम्स मोमेंट बाय मोमेंट। लेकिन ये भी अपने आप में उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति का ही प्रमाण है कि वो बेटियों के लिए टिकी रही।
उनकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए, अगर हमें तीन सबसे निर्णायक मोड़ चुनने हों जिन्होंने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी, तो वो कौन से होंगे?
पहला मोड़ तो बिना किसी शक के पिता एल्विस प्रेस्ली की मृत्यु 1977 ही था,
9 साल की उम्र में।
जी, वो अनुभव उनके अस्तित्व का, उनकी पहचान का केंद्रीय बिंदु बन गया। इसने बचपन खत्म कर दिया, उन्हें एक सार्वजनिक संपत्ति बना दिया, और दुख के साथ उनका वो आजीवन रिश्ता कायम कर दिया जिसने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। इसने उनकी पहचान को गढ़ा भी और कहीं ना कहीं सीमित भी कर दिया।
दूसरा अहम मोड़ कौन सा मानेंगे?
दूसरा अहम मोड़ मैं उनके पहले एल्बम टू हूम इट मे कंसर्न के विमोचन 2003 को मानूंगा।
अच्छा,
क्यों? क्योंकि सालों की अटकलों और बाहरी दबाव के बाद ये उनका अपनी शर्तों पर दुनिया के सामने आना था। ये सिर्फ संगीत रिलीज करना नहीं था, ये अपनी आवाज, अपना नजरिया, अपनी कहानी दुनिया को सुनाने का ऐलान था।
हाँ, ये एल्विस की बेटी की उस मूक छवि को तोड़ने का एक सचेत प्रयास था।
बिल्कुल, और एल्बम की सफलता ने उन्हें एक कलाकार के तौर पर स्थापित किया। पहली बार उनकी पहचान उनके अपने काम से बनी, सिर्फ उनके वंश से नहीं। इससे उन्हें एक मकसद मिला, अपने अनुभवों को रचनात्मक रूप से बाहर निकालने का एक मंच मिला।
और तीसरा मोड़, जाहिर है?
हाँ, तीसरा और सबसे विनाशकारी मोड़, बेटे बेंजामिन कियो की मृत्यु 2020। ये वो ट्रेजेडी थी जिससे वो सच में कभी उभर नहीं सकी।
इसने उनकी आत्मा को छलनी कर दिया, जैसा उन्होंने खुद कहा था।
जी, अगर पिता की मृत्यु नींव का घाव थी, एक फाउंडेशनल वूंड था, तो बेटे की मृत्यु एक ऐसा असहनीय घाव था जो शायद कभी भर ही नहीं सकता था। उसने उन्हें तोड़ दिया।
इस घटना ने उन्हें आखिर कैसे बदला? मतलब पहले के दुखों से ये अलग कैसे था?
इसने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। रायली के शब्दों में, वो निराशा की उन गहराइयों में उतर गई जहां से वापसी लगभग नामुमकिन थी। उनका सार्वजनिक रूप भी बदल गया। वो जो एक सतर्क, थोड़ी दूरी बनाकर रखने वाली सर्वाइवर थीं,
हाँ,
वो अब विनाशकारी हानि झेल रहे लोगों के लिए एक खुली, कच्ची, बेहद ईमानदार आवाज बन गईं। दुख की जो भयावह वास्तविकता है, उस पर उनकी ईमानदारी वो चौंकाने वाली थी। इस घटना ने उनके जीवन की कहानी को एक दुखद मगर शायद अनिवार्य अंतिम अध्याय दे दिया।
लीसा मैरी की इस बेहद जटिल और मार्मिक कहानी से हम आज क्या सीख सकते हैं? आज के दौर में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
कई गहरे सबक हैं इसमें। पहला तो शायद यही कि पहचान सिर्फ विरासत में नहीं मिलती, उसे गढ़ना पड़ता है, उसके लिए लगातार लड़ना पड़ता है, खासकर तब जब दुनिया ने आपके लिए पहले से ही एक कहानी लिख रखी हो। लीसा मैरी का पूरा जीवन इसी संघर्ष का प्रमाण है।
और दूसरा जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा वो गहरे दुख के बारे में है। उनकी कहानी, खासकर बेंजामिन की मौत के बाद की, ये बताती है कि कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जो समय के साथ हल्के नहीं होते, वो गुजर जाने वाले चरण नहीं होते, बल्कि हमारे अस्तित्व का स्थायी हिस्सा बन जाते हैं।
सही कहा, उन्हें पार नहीं किया जाता, उन्हें ईमानदारी और बचे हुए प्यार के साथ ढोना सीखा जाता है। ये एक बहुत बड़ा सबक है।
तीसरा सबक प्रामाणिकता की ताकत का है। आज की ये सोशल मीडिया वाली अक्सर नकली चमक दमक वाली दुनिया में उनका वो कच्चापन, वो खरापन, वो बेबाकी, वो अपने आप में एक शक्तिशाली बयान था। शायद असली मजबूती अपनी कमजोरियों और अपनी सच्चाई को स्वीकार करने में ही है।
और अंत में प्रेम का महत्व, खासकर माँ का प्यार। तमाम उथल पुथल, नशे की लत, त्रासदियों के बीच उनके बच्चों के प्रति उनका जो समर्पण था वो अटूट रहा, वो उनके जीने की वजह बने रहे। ये याद दिलाता है कि आखिर में मानवीय रिश्ते ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं।
आज के सेलिब्रिटी कल्चर को देखते हुए भी उनकी कहानी बहुत कुछ कहती है।
बिल्कुल, ये हमें प्रसिद्धि की मानवीय कीमत याद दिलाती है। ये दिखाती है कि पैसा और रुतबा दुख या मानसिक स्वास्थ्य के समस्याओं से बचाव की कोई गारंटी नहीं है। और नशे की लत पर उनकी जो ईमानदारी थी वो उस कलंक को तोड़ने में मदद करती है जो अक्सर इन मुद्दों से जुड़ा होता है।
नेकी, याद रखने की और प्रेम की उस स्थायी शक्ति का प्रतीक है जो मौत के बाद भी बनी रहती है।
बहुत खूबसूरत बात कही।
तो इस गहरी और थोड़ी भारी बातचीत के अंत में अगर हमें तीन मुख्य निष्कर्ष निकालने हों, एक भावनात्मक, एक बौद्धिक और एक सार्वभौमिक, तो वो क्या होंगे?
ठीक है, भावनात्मक अंतर्दृष्टि ये हो सकती है, गहरा दुख, खासकर किसी बच्चे को खोने का दुख, जीवन का एक स्थायी परिदृश्य बन सकता है। इसे हराया नहीं जाता, बल्कि इसके साथ जीना सीखा जाता है, पूरी ईमानदारी और बचे हुए प्यार के सहारे। लीसा मैरी का अपने बेटे की मृत्यु के बाद का अनुभव हमें यही दिखाता है।
बौद्धिक अंतर्दृष्टि के तौर पर क्या कहेंगे?
बौद्धिक अंतर्दृष्टि ये है, विरासत एक बहुत शक्तिशाली विरोधाभास है। ये एक विशेषाधिकार भी हो सकती है और एक जेल भी। लीसा मैरी का जीवन ये दिखाता है कि एक प्रतिष्ठित, लगभग मिथकीय पृष्ठभूमि के साय में अपनी व्यक्तिक पहचान बनाना कितना गहरा और जटिल संघर्ष हो सकता है, जहां बाहरी मिथक लगातार आपके भीतरी सच पर हावी होने की कोशिश करता हो।
और अंत में एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि जो हम सबके लिए प्रासंगिक हो।
सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि ये है, पहचान केवल वो नहीं जो हमें मिलती है या जो हमें विरासत में मिलती है, पहचान वो है जिसे हम सक्रिय रूप से चुनते हैं, बनाते हैं और जिसके लिए हम लड़ते हैं, खासकर तब जब दुनिया हमारी कहानी खुद लिखना चाहती हो। अपनी आवाज खोजना और उसे बनाए रखना एक जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। लीसा मैरी के संघर्ष ने हमें यही दिखाया।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकेतर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।